الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے اذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. یاد کرنے کا کیا معنی؟ کہ ہم اللہ کا ذکر کریں اور اس کے بدلے اللہ تعالی ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرمائیں گے. اللہ کا یاد کرنا، اس کے یہ معنی ہے کہ جب بندے کے لیے اللہ کوئی فیصلہ کرے تو اس کے حق میں بہتر کرے، بھلے کا فیصلہ کرے. یہ ہے اللہ کا یاد کرنا. اس کی مثال یوں سمجھیں کہ آپ کے بیٹے نے جاب کے لیے اپلائی کیا اور جہاں باس ہے وہ آپ کے والد کا دوست ہے، تو آپ کے والد اس کو سفارش کرتے ہیں، میرے بیٹے نے اپلائی کیا ہے، آپ پلیز اس کا خیال رکھیے گا. اب خیال رکھنے کا کیا معنی ہے؟ کہ جب آپ فیصلہ کرنے لگیں تو اس کے حق میں فیور کرنا، اچھا فیصلہ کرنا. پھر جس دن انٹرویو ہوتا ہے تو وہ اپنے دوست کو فون کر کے کہتا ہے آپ میرے بیٹے کو یاد رکھیے گا. تو یاد رکھنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ اس بیٹے کا نام پکارے گا عبداللہ عبداللہ عبداللہ، بلکہ اس کا مطلب یہ کہ جب فیصلے کا وقت آئے گا تو اس کے حق میں خیر کا فیصلہ کرے گا. تو ہم اللہ کو یاد کریں گے اللہ 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 کے ذکر سے، اور اللہ ہمیں یاد کریں گے ہمارے حق میں خیر کا فیصلہ کر کے. یہ ہے اللہ کا یاد کرنا. تو فرمایا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تم مجھے خوشی کے وقت میں یاد کرو میں تمہیں آزمائش کے وقت میں یاد کروں گا. تم مجھے صحت کے موقع پہ یاد کرو میں بیماری کے موقع پہ تمہیں یاد کروں گا. تم دنیا میں مجھے یاد کرو میں آخرت میں تمہیں یاد کروں گا. اذکرونی اذکرکم، میرے بندو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا. تم معذرت کے ساتھ مجھے یاد کرو گے میں تمہیں مغفرت کے ساتھ یاد کروں گا. تم عمل کے ذریعے سے مجھے یاد کرو گے میں اجر کے ذریعے سے تمہیں یاد کروں گا. اذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، اور تم میرا شکر ادا کرو گے اور میری ناشکری نہیں کرو گے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جب میں نے بندے کو نعمتوں سے نوازا تو ان نعمتوں کا شکر ادا کرے بندہ. حق بھی بنتا ہے کہ محسن کو انسان شکریہ کے ساتھ یاد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے محسن حقیقی ہیں، منعم حقیقی اللہ تعالیٰ ہے. ہمارے پاس جو کچھ ہے اپنا کچھ بھی نہیں، سب اللہ کا دیا ہوا ہے. زندگی اللہ نے دی، صحت اللہ نے دی، جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے. آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں کھانا نہ دیتے ہم بھوکے ہوتے، پانی نہ دیتے ہم پیاسے ہوتے، صحت نہ دیتے ہم بیمار ہوتے، لباس نہ دیتے ہم ننگے ہوتے، اللہ تعالیٰ علم نہ دیتے ہم جاہل ہوتے، اللہ تعالیٰ ہمیں مال نہ دیتے ہم فقیر ہوتے، اللہ تعالیٰ ہمیں گھر نہ دیتے بے گھر ہوتے، اولاد نہ دیتے لاولد ہوتے، اللہ تعالیٰ ہمیں عزت نہ دیتے ہم ذلیل ہوتے، اللہ تعالیٰ عقل نہ دیتے ہم پاگل ہوتے. آج جو عزتوں بھری زندگی ہم دنیا میں گزار رہے ہیں یہ سب اس مولا کا کرم اور احسان ہی تو ہے. ہر چیز ہمیں اللہ نے عطا کی ہے، تو ہم تو اللہ تعالیٰ کے احسانات میں ڈوبے ہوئے ہیں سر سے لے کے پاؤں تک. सच्ची बात तो यह है कि जितने हमारे जिस्म के बाल हैं, इतनी जुबानें होती और इतनी जुबानों से हम अल्लाह का शुक्र अदा करते, हम उसका शुक्र फिर भी अदा ना कर सकते हैं। अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करना कोई आसान काम नहीं है। तवज्जो फरमाइए, बुखारी शरीफ की रवायत है कि एक आबिद था बनी इसराइल का, उसने पहाड़ की चोटी के ऊपर 400 साल अल्लाह की इबादत की। 400 साल बहुत बड़ा टाइम है, हमारी तो पूरी जिंदगी अभी 50-60 साल की है। उसने 400 साल अल्लाह की इबादत की, फिर उसने ये दुआ मांगी कि अल्लाह जब मेरी मौत का वक्त आए तो सजदे में मौत देना, और उसकी दुआ कबूल हुई और नमाज के सजदे में उसको मौत आ गई। जिब्रील साहब ने बताया, ऐ अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब अल्लाह के हुजूर उसकी पेशी हुई तो अल्लाह ने फरमाया, मेरे इस बंदे को मेरे फजल से जन्नत अता कर दो। उसने आगे से कहा, या अल्लाह, मेरे अमल की वजह से मैंने 400 साल इबादत की है। अल्लाह ने फरमाया, मेरे फजल से जन्नत दो। उसने कहा, या अल्लाह, बे अमली, मेरे अमल की वजह से। फिर अल्लाह ने फरमाया, बे फजली, मेरे फजल से जन्नत भेज दो। अल्लाह, मेरे अमल की वजह से। अल्लाह ने फरिश्तों को कहा, अच्छा, इसके अमलों का और जो मैंने इसको दुनिया में नेमतें दी हैं उसका जरा मुवाजना कर लो। फरिश्तों ने जब मुवाजना किया तो 400 साल की इबादत उसकी आंखों की बिनाई का हक अदा न कर सकी। अल्लाह ने फरमाया, मेरे बंदे, तेरी 400 साल की इबादत तो मेरी बिनाई का हक अदा न कर सकी, और मैंने तो तुझे बहुत नेमतें दी हैं, इसलिए अब तुझे जहन्नम भेजे हैं। जब जहन्नम का हुक्म आया फिर वो रोया, या अल्लाह, आपके फजल की वजह से मुझे जन्नत दे दीजिए। तो अल्लाह ने फिर उसे अपने फजल से जन्नत अदा फरमा दी। आप गौर कीजिए, 400 साल की इबादत करके भी एक बंदा अल्लाह के फजल से जन्नत जाएगा, अपने अमलों की वजह से नहीं जा सकता। हमारी तो उम्र ही नहीं है और हमारी फिर इबादत भी नहीं है, तो हम तो अगर जन्नत में जाएंगे तो अल्लाह ही के फजल से जन्नत में जाएंगे, हम लोग पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। ये सब खाम माल है जो हमने तैयार कर रखा है, हमारे अमल तो नाकिस चीज है, इस पर कोई भरोसा ना करें। फरमाया, वश्करूली, तुम मेरा शुक्र अदा करो, वला तकफरून, और मेरा नाशुक्री ना करो। नाशुक्री को कुफर के मुतरादिफ करार दिया। हज़रत सुलेमान साहब ने दुआ मांगी, रब्बे औज़ेनी अन अश्कुरा निअमतकल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया। ऐ अल्लाह, जो मेरे ऊपर और मेरे वालिदैन के ऊपर तेरा एहसान था, तेरे इनामात थे, मुझे उनका शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमा। नबी रसूल ने भी दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिका। ऐ अल्लाह, मेरी मदद फरमा कि मैं आपकी नेमतों का शुक्र अदा करूं, आपको याद करूं और आपके कुरान की तिलावत करूं। कुरान मजीद में एक कौम का तज़किरा है जिसके पास अमन भी था, इत्मीनान भी था। कुरान मजीद ने दो लफ्ज इस्तेमाल किए हैं, अमन और इत्मीनान। क्या माना? कि अमन था यानी अंदरूनी खल्फशार नहीं था कोई, और इत्मीनान था बाहर से भी दुश्मन का डर नहीं था कि कोई दुश्मन हमला करेगा। तो न बाहर के दुश्मन का डर था, न अंदर के दुश्मन का कोई खौफ था, अमन भी था इत्मीनान भी था। अल्लाह फरमाते हैं, लकद कान सबइन फी मस्कनहिम आया। अल्लाह फरमाते हैं, वदरब अल्लाहु मसलन करियतन कानत आमिनतम मुतमइन्ना। और अल्लाह मिसाल बयान फरमाता है एक बस्ती वालों की जिनके पास अमन भी था, इत्मीनान भी था। यातीहा रिज़्क़ुहा रग़दम मिन कुल्ल मकान, चारों तरफ से उनके ऊपर रिज़्क़ की बहुतात थी, रिज़्क़ की फराखी थी, यानी बहुत अमीर कौम थी वो, इतना रिज़्क़ था उनके पास। वकफ़रत बिअन्निमिल्ला, उन्होंने अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री की। फ़अज़ाक़ा अल्लाहु लिबासल जूई वल खौफ बिमा कानू यसनऊन, अल्लाह ने उनको भूख नंग और खौफ का लिबास पहना दिया, इसलिए कि वो करतूत ऐसे करते थे। जब बंदा अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री करता है तो अल्लाह ताला उसको भूख नंग और खौफ का लिबास पहना देते हैं। आप देखें सब कुछ होने के बावजूद भी तंगी होती है, फकर होता है, बिल पूरे नहीं होते, बिल को देख के दिल ढिल जाता है, ये कैसे अदा करेंगे। जितने घर के लोग हैं सारे के सारे नौकरियां करते हैं फिर बिल पूरे नहीं होते, और ऊपर से हर वक्त एक फियर ऑफ अननोन होता है, कुछ हो ना जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो अल्लाह ताला भूख नंग और खौफ का लिबास पहना देते हैं बंदे को जब वो अल्लाह ताला की नेमतों की नाशुकरी करता है। अब नेमतों का शुक्र अदा कैसे करें, आज की इस महफिल में इसी उनवान पे गुफ्तगू होगी। सबसे पहली बात कि नेमतों को कभी कम न समझें। कोई भी अल्लाह की नेमत है ना, उसको कभी छोटा न समझें, हकीर न समझें, मामूली न समझें। लोग कई मर्तबा नेमतों को हकीर समझते हैं। मसलन बहू की बहू घर आई तो जो उसको माँ बाप ने दहेज दिया उसको कहना क्या दिया है इन्होंने, ये कोई देने वाली चीज थी? भाई माँ बाप ने जब बेटी का हाथ पकड़ा दिया तो माल दौलत की क्या कीमत है, जो उनके पास वसाइल थे उन्होंने अपनी तरफ से बेटी का जहेज बेहतरीन बनाया। अब आपके पास माल ज्यादा है और आपके दर्जे के मुताबिक नहीं बना तो उसको कम नजर से ना देखें। अक्सर लोग रिश्तेदारों के घर में जाते हैं और वो चाय के साथ सिर्फ बिस्किट सामने रख देते हैं, इस पे बातें बनाते हैं, और ये उन्होंने क्या चाय पिलाई हमें, बस बिस्किट सामने रख दिए। भाई उनके जितने वसाइल थे उन्होंने मेहमान नवाजी की, आप अगर केक खाने के आदी हैं और रंग बिरंगी चीजें खाने के आदी हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, उन्होंने जो कुछ पेश किया उसको कम न समझें। इंसान जब नेमतों को कम समझता है तो फिर नेमतों की नाकदरी भी करता है। खास तौर पर कारोबारी हजरात नेमत को कम न समझें। एक सहाबी थे अब्दुल रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु, वो बिजनेसमैन थे। एक मर्तबा उन्होंने 1000 ऊंट खरीदे एक मंडी में से। उनका ख्याल था मैं यहां से खरीदूंगा और शाम को मंडी फलां जगह लगती है वहां जाके 1000 ऊंट बेचूंगा तो मुझे नफा हो जाएगा। अब उन्होंने 1000 ऊंट खरीदे और जब दूसरी मंडी में बेचने के लिए गए तो वहां पे प्राइस कोई ज्यादा नहीं थी, हत्ता कि उनकी डील हुई जिस कीमत पे खरीदे थे उसी कीमत पे उन्होंने बेच दिए, जो परचेज प्राइस थी उसी पे सेल कर दिए। तो उनके एक दोस्त ने कहा कि आपको तो बहुत मुशक्कत हुई, आपने 1000 ऊंटे खरीदे बेचे मगर आपने कोई नफा ही नहीं कमाया। उनका नहीं, मुझे 2000 दिरहम का नफा हो गया। वो कैसे? उनका इसलिए कि जब मैंने खरीदे थे तो ऊंट उनकी महार के साथ थे, रस्सी के साथ थे, और जब मैंने उनकी बेचने की डील की तो मैंने कहा था भाई मैं ऊंट बेचूंगा, गले की रस्सी नहीं बेचूंगा। तो 1000 रस्सियां मुझे बच गई और हर रस्सी 1 दिनार की आती है या 1 दिरहम की, तो 1000 रस्सियां मुझे बच गई, तो 1000 दिनार मुझे बच गए। उसने कहा आप तो कह रहे थे कि 2000 दिरहम बच गए, ये तो 1000 दिरहम बचे। उनका नहीं नहीं नहीं, आप और करो, अगर मैं उन ऊंटों को न बेचता और अगले दिन बेचता तो मुझे रात को ऊंटों को खाना खिलाना पड़ता और वो भी 1000 दिरहम उनके ऊपर लगता, तो मैंने उनको खाना खिलाने की बजाय उनको बेच दिया और वो मेरा एक्सपेंस जो था वो भी मुझे प्रॉफिट हो गया, तो मुझे 1000 दिरहम प्रॉफिट नहीं हुआ, 2000 दिरहम प्रॉफिट। यानी सहाबे कराम इतना डीप डाउन जाके थोड़े प्रॉफिट को भी बड़ा समझ के तिजारत कर लिया करते थे, और जो बंदा ऐसी तिजारत करता है फिर अल्लाह उसको बरकत देता है। आज तो लोग बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट कमाते हैं और मुंह बनाते हैं कि जी कुछ नहीं बचा हमें। भाई जब कुछ बचे तो फिर अल्लाह का शुक्र अदा करो ना कि लॉस नहीं हुआ, प्रॉफिट ही हुआ है ना, अगर ये थोड़ा सही। बनी इसराइल को अल्लाह ताला फरमाते हैं वजअलकुम मुलूका, ए बनी इसराइल वालो हमने तुम्हारे अंदर अंबिया को भी भेजा और तुम्हें बादशाहों की जिंदगी अता फरमाई। वजअलकुम मुलूका, तुम्हें हमने बादशाह बनाया। तो बादशाह की तफसीर में मुफस्सरीन ने लिखा है जिस बंदे के पास 5 चीजें हों वो बादशाहों जैसी जिंदगी गुजारता है, रोटी कपड़ा मकान बुनियादी चीजें तीन, और चौथा बीवी और पांचवा सवारी। जिस बंदे के पास ये पांच चीजें हो वो बंदा बादशाहों जैसी जिंदगी गुजार रहा होता है। अगर आप गौर करें तो आज हम में से हर बंदा बादशाह जैसी जिंदगी गुजार रहा है। हमारे पास पांचों चीजें हैं, रोटी कपड़ा मकान सवारी और बीवी, पांचों चीजें हैं, और हम फिर समझते हैं जी हमें अल्लाह ने कुछ नहीं दिया। तो ये अल्लाह ताला की नेमतों की नाकदरी है, इसलिए नाकदरी से बचना चाहिए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। फिर इसमें एक पॉइंट ये भी है कि नेमत को इंसान कभी जाया ना करे। हत्ता के हदीस पाक में आता है कि दस्तरखान के ऊपर जो बचे हुए रोटी के टुकड़े होते हैं उनको जो बंदा खा लेता है उसके लिए जन्नत की हूरों का मेहर अदा हो जाता है। और एक हदीस पाक में है कि जो बंदा दस्तरखान की बची हुई छोटे छोटे टुकड़ों को या बची हुई चीजों को खा लेता है इसके बदले अल्लाह उसके रिज्क में फराखी अता फरमा देते हैं। तो देखो देखने में छोटा अमल है लेकिन इस पर अल्लाह रिज्क फराख कर देते हैं। इसलिए शरीयत ने कहा कि अगर कोई बंदा अपनी उंगलियों से खाना खाए, जैसे चावल पुलाव अपनी उंगलियों से खाते हैं तो उंगलियों के ऊपर वो पुलाव लगा होता है, तो उसको धोने की बजाय पहले उंगलियों को साफ कर ले, चाट ले, ताकि वो नेमत जाया होने की बजाय वो पेट का हिस्सा बन जाए, जाया ना हो। शरीयत इस चीज की तालीम देती है। हजरत थानी रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा ट्रेन में सफर कर रहे थे, एक नवाब साहब भी आके बैठ गए वहां कमरे में, बातचीत होती रही। कुछ देर के बाद खाने का वक्त हो गया तो दस्तरखान लगाया गया और खान साहब जो नवाब साहब थे वो भी हजरत थानी रहमतुल्लाह के साथ दस्तरखान पर खाना खाने लगे। अल्लाह की शान देखे कि सालन में गोश्त पका हुआ था मगर गोश्त ज्यादा गला हुआ नहीं था, सख्त था। नवाब साहब ने एक बोटी उठा के खाने की कोशिश की लेकिन जब वो बोटी उन्होंने मुंह में डाली और उसको खींचने की कोशिश की तोड़ने के लिए तो उनके हाथ से बोटी स्लिप हो गई और वो नीचे गिर गई। अब ट्रेन का फर्श तो मैला होता है, गंदा होता है, तो जब वो बोटी नीचे गिर गई तो नवाब साहब ने अपने जूते से उस बोटी को सीट के नीचे धकेल दिया। हजरत थानी रहमतुल्लाह के चेहरा जो था उस पर गुस्से के आसार। हजरत मजूब रहमतुल्लाह अलैह राजदार थे, खिदमत गुजार थे, महरम राज थे, वो समझ गए। उन्होंने इशारे इशारे में पूछा कि हजरत आपकी तबीयत पे गरानी की वजह क्या है, तो हजरत ने इशारे में बताया कि खान साहब ने बोटी को पांव से जूते से नीचे धकेल दिया है, ये अल्लाह ताला की रिज्क की नकदरी है। तो हजरत मजूब रहमतुल्लाह अलैह ने वो बोटी नीचे से उठाई और उसको पानी से अच्छी तरह धो लिया। जब अच्छी तरह धो लिया तो फिर उसको उन्होंने खा लिया। हजरत थानवी रहमतुल्लाह की तबीयत अच्छी हो गई। फिर हजरत थानवी ने उस नवाब साहब को कहा कि नवाब साहब आपने इस बोटी को जूते से धकेल दिया था, मैंने अल्लाह के रिज्क की ऐसी नकदरी कभी नहीं देखी, लेकिन देखो इसको इन्होंने धो के खा लिया, इन्होंने अल्लाह की नेमत की कदरदानी की, मेरी तबीयत फिर अच्छी हो गई, बहाल हो गई। तो इंसान अल्लाह की नेमत की नकदरी न करे। अल्लाह ताला उस बंदे को पसंद करते हैं जो रिज्क की कदरदानी करने वाला हो। बल्कि किताबों में लिखा है कि एक आदमी था, मौत हो गया, ख्वाब में नजर आया, किसी ने पूछा भाई क्या बना, उसने कहा अल्लाह ने मेरी बख्शिश कर ली। उसने पूछा किस अमल पे बख्शिश हुई, कहने लगा मैं अपने घोड़े पे जा रहा था सवार और मेरे पास चने थे, मैं चने खा रहा था, एक एक चना मुंह में डाल रहा था और चने खा रहा था, एक चना जब मुंह में मैंने डालने की कोशिश की तो वो मेरे दांत से लगा और नीचे गिर गया, अगर मैं चाहता तो मैं चलता रहता, एक दाना ही है ना नीचे गिर गया कोई बात नहीं। मेरे दिल में ख्याल आया ये अल्लाह का दिया हुआ रिज्क है, मुझे इसकी कदर करनी चाहिए, मैंने घोड़े को खड़ा किया, नीचे उतरा और जमीन से उठा के वो चने का दाना मैंने खा लिया। उस चने के दाने को खाने पर अल्लाह को खुशी हुई, मेरे बंदे तूने मेरे रिज्क की कदर की, मैंने इस पर तेरे जिंदगी के सब गुनाहों को माफ कर दिया। پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بدلے انسان اعمال صالحہ کرے. جب اللہ نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں، کیونکہ محسن کے نافرمانی کرتے ہوئے حیا آتی ہے. اللہ تعالیٰ محسن حقیقی ہیں، ہم اس کی کیوں نافرمانی کریں؟ ہم اس کی فرما برداری کریں، بھاگ بھاگ کے نمازیں پڑھیں. جس غلام کو اس کا مالک اچھا کھلائے پلائے تو وہ غلام دوڑ دوڑ کے کام کیا کرتا ہے. ہم بھی نعمتوں کی قدردانی یہ ہے کہ بھاگ بھاگ کے اللہ کی عبادت کریں، تلاوت کریں، نیکی کریں، تاکہ ہمارا پروردگار اس کے بدلے ہم سے راضی ہو جائے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف نعمتوں کو منسوب کریں. یہاں پر بہت غلطی ہوتی ہے، ہم عام طور پر نعمتوں کو اپنی طرف منسوب کر لیتے ہیں، اللہ کی طرف منسوب نہیں کرتے. اس کی مثال یوں سمجھیں، ایک نوجوان اپنی جاب کے لیے انٹرویو دینے گیا. اب اس کو جاب مل گئی، گھر آیا، ماں نے پوچھا بیٹا کیا بنا؟ امی اس نے مجھ سے یہ کوشچن پوچھا، میں نے یہ جواب دیا. اس نے یہ پوچھا، میں نے یہ بتایا. اس نے یہ کہا، میں نے یہ جواب دیا. میں نے اب میں کی بارش ہو رہی ہے. امی اس نے یہ پوچھا، میں نے سوچا میں یہ بھی بتا دوں، میں نے یہ بھی کہہ دیا، میں نے وہ بھی کہہ دیا. اور آخر پہ کہتے ہیں امی پھر مجھے جاب مل گئی. اچھا، اب اس بندے کو فرض کرو انٹرویو پہ گیا تھا، جاب نہیں ملی، گھر آتا ہے، ماں پوچھتی ہے بیٹا کیا ہوا؟ امی جاب نہیں ملی. کیوں بیٹا؟ امی اللہ کی مرضی. بھائی جاب ملی تھی جب، تب بھی تو اللہ کی مرضی تھی نا، اس وقت اللہ یاد نہیں آیا. اس وقت میں نے یہ جواب دیا، میں نے یہ سوچا، میں نے یہ کہا، میں نے کہا، میں کی بارش ہو رہی ہے. اور جب جاب نہیں ملی تھی اللہ کی مرضی. بھائی جب جاب مل گئی تھی تب بھی اللہ کی مرضی تھی تو جاب ملی تھی. تو انسان کی فطرت ہے کہ جب اس کو فتح ہوتی ہے، کامیابی ہوتی ہے تو اپنی طرف منسوب کرتا ہے، ناکامی ہوتی ہے پھر اللہ کے سر پہ ڈال دیتا ہے. تو یہ نعمتوں کی ناقدری ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. جو پروردگار نعمتیں دینا جانتا ہے وہ پروردگار نعمتیں لینا بھی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کو نعمتیں واپس لینا بھی آتی ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہوئی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں تاکہ وہ نعمتیں واپس نہ ہوں. ہم نے دیکھا ہے دن بدلتے دیر نہیں لگتی. بہت سارے لوگ خوب رزق کی فراخی ہوتی ہے، نافرمانیاں کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ رزق کو تنگ کر دیتے ہیں، تو پھر یاد کرتے ہیں حضرت ایک وقت تھا مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے سونا بن جاتی تھی، آج تو سونے کو ہاتھ لگاتے ہیں مٹی بن جاتی ہے. بھئی یہ دن ایک جیسے نہیں رہتے. جب اللہ نے رزق کو کھولا ہوا تھا اس کی ناقدری کی، آج اللہ نے یہ دن دکھائے کہ سونے کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں تو مٹی بن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہیں کہ ہمیں ٹیبل کے اس طرف سے اٹھا کے ادھر بٹھا دے اور ادھر والے کو اٹھا کے ادھر بٹھا دے. یہ کوئی مسئلہ نہیں اللہ کے لیے. تو نعمتوں کی قدردانی کرنی چاہیے. آج اللہ نے ہمیں دینے والا بنایا ہے، کل لینے والا بھی بنا سکتے ہیں، پتہ نہیں چلتا بندے کو. مجھے 1993 میں کیلیفورنیا جانے کا موقع ملا. ان دنوں وہاں پہ ایک بڑا زلزلہ آیا تھا، بگ ون اس کا نام انہوں نے رکھا ہوا تھا، اور وہ زلزلہ ایسا تھا کہ زمین میں دراڑ پڑ گئی تھی اور بہت بڑی بڑی بلڈنگ گر گئی تھی، پل ٹوٹ گئے تھے، پولیس اسٹیشن گر گئے تھے، ہاسپٹل کی بلڈنگ گر گئی تھی. تو میرے ایک دوست مجھے وہاں جو نقصان ہوا وہ دکھانے کے لیے لے کے چلا. تو اس نے ایک جگہ بلڈنگ دکھائی، کہنے لگا حضرت یہ ایک ہندو کی بلڈنگ تھی، ملٹائی اسٹوریڈ بلڈنگ تھی، کوئی شاید 40 اسٹوریڈ بلڈنگ تھی اور کئی 100 اس کے اندر گھر تھے. ایک انڈیا کے آدمی نے بنائی ہوئی تھی، ہندو تھا، اور اس उसके बैंक में 60 मिलियन डॉलर कैश मौजूद था। अल्लाह की शान देखें कि जिस बंदे के बैंक अकाउंट में 60 मिलियन डॉलर मौजूद है, तो वो जलजला आया और पूरी इमारत जो थी वो गिर गई। अब जब इमारत गिर गई तो लोग उसमें मर गए दब के, तो लोगों ने उसके ऊपर मुकदमा कर दिया। अदालत ने फैसला किया कि जितना पैसा इसके पास मौजूद है वो सब का सब मरने वालों के अंदर तकसीम कर दिया जाए। तो उसके 60 मिलियन डॉलर उसमें तकसीम हो गए और उसके पास पैसा भी नहीं था। चुनांचे अगले दिन वो हिंदू सड़क के किनारे खड़ा हुआ और कपड़ा बिछाया और लोगों से भीख मांग रहा था कि जी मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं है, मुझे आप दे दो। जिसके बैंक अकाउंट में आज 60 मिलियन डॉलर हैं, कल वो बंदा सड़क के किनारे खड़ा भीख मांग रहा है। तो हालात तो किसी वक्त बदल सकते हैं। हमें अल्लाह ताला देने वाले की बजाय लेने वाला भी बना सकते हैं। अगर उसने देने वाला बनाया है तो इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। जितना शुक्र अदा करें कम है। एक मरतबा मैं अपने शेख के साथ हरम शरीफ में था, तो इंग्लैंड का एक नौजवान आया और हजरत से कहने लगा कि हजरत मैं आपसे एक मसला पूछने आया हूं। हजरत ने फरमाया क्या मसला? हजरत हरम में ना हज के मौके पे फकीर बड़े होते हैं, हर 2-4 मिनट बाद कोई ना कोई फकीर मांगने वाला आ जाता है, उनमें से कई सेहतमंद भी होते हैं, तो दिल समझता है कि ये आदि मांगने वाले हैं, हम अगर इनको देंगे तो इनकी आदत खराब होगी। अब बताएं कि उनको कुछ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। वो अगर अहल नहीं मांगने के तो हम उनको क्यों दें? तो मैं आपसे मसला पूछने आया हूं। हजरत ने उसकी तरफ देखा और उससे कहा कि अच्छा ये बताओ, अल्लाह ने तुम्हें जो कुछ दिया है तुम इसके अहल थे? कहते नहीं, मैं तो इसका अहल नहीं था। भाई जब तुम इसके अहल नहीं थे और अल्लाह ने तुम्हें फिर भी दे दिया, तुम भी अल्लाह के खुल्क को अपनाओ, जो तुमसे मांगने आया तुम उसे अल्लाह के नाम पे दे दो। वो बंदा चुप तो हो गया, लेकिन उसको कोई तहकीकी जवाब चाहिए था, अकली जवाब चाहिए था, और उसकी तसल्ली नहीं हो रही थी। तो बस हजरत के सामने बैठा था, हजरत समझ गए कि इसने बात सुन तो ली है, मानी नहीं है दिल से। फिर हजरत ने उसको बात जरा दूसरे अंदाज से समझाई, फरमाया कि देखो अगर तुमसे कोई बंदा मांगने के लिए आया है तो अल्लाह ने तुम्हें देने वाला बनाया है ना? कहने लगा जी हाँ, देने वाला बनाया है। कहने लगे इसके शुक्रिया के तौर पे तुम उसको अल्लाह के लिए दे दिया करो। या अल्लाह तूने मुझे मांगने वाला नहीं, तूने मुझे देने वालों में शामिल किया है, मैं तेरे शुक्र के तौर पे इसको ये दे रहा हूं। फरमाया कि कोई सोने का ताज सर पे रख के तुम्हारे पास मांगने के लिए आए तो तुम इस वजह से दे दो कि अल्लाह ये मेरे पास मांगने आया, मैं इसके पास मांगने के लिए जा सकता था, ऐसा भी पॉसिबल था, ये मेरे पास आया और तूने मुझे देने वाला बनाया, मैं तेरे शुक्रिया के तौर पे इसको तेरे रास्ते में दे रहा हूं। ये मत देखो मुस्तहक है या नहीं, तुम भी मुस्तहक नहीं, अल्लाह ने फिर भी तुम्हें बहुत कुछ दिया हुआ है, तुम अल्लाह के नाम पे दे दिया करो, ज्यादा डिटेल में मत पढ़ो। तब उसकी तसल्ली हुई और वो कहने लगा ठीक है, मैं भी अल्लाह के नाम पे दे दिया करूंगा। तो देखो अल्लाह ने हमें कितनी नियमतें हैं जो बिन मांगे अता की हैं। मैं एक मरतबा गर्मियों का मौसम था, सफर कर रहा था, तो फ्रंट सीट के ऊपर मैं बैठा हुआ ऊंघ रहा था, कुछ जिक्र भी कर रहा था और सफर चल रहा था। एक जगह पे ड्राइवर ने गाड़ी खड़ी की कि आगे रेड लाइट थी, इशारे पे किसी ने ना शीशा खटखटाया दरवाजे का। तो मैंने अचानक ऊपर देखा कि ये कौन है शीशा खटखटाने वाला, तो एक मैंने देखा कि कोई नौजवान औरत है मांगने वाली, उसने दरवाजा खटखटाया था और उसने हाथ यूं आगे फैलाए और यूं, चूंकि शीशा बंद था, उसने अल्लाह के नाम पे मांगा। अल्लाह अकबर कबीरा, आधा घंटा मेरी आंखों में आंसू रहे, मैं अल्लाह ताला के सामने रोता ही रहा। मैंने कहा या अल्लाह ये नौजवान औरत है, इसका रिस्क आपने लिखा है, ये गैर मर्दों के सामने हाथ फैला फैला के खाना मांग रही है और इसकी किस्मत में रोजी इस तरह है, हमारे घर की औरतों को एयर कंडीशन कमरों में दस्तरखान के ऊपर कई कई किस्म के खाने आप खिलाते हैं, उनको सुरखाब के पर लगे हुए हैं, ये आपका एहसान है अल्लाह कि आपने उन्हें इतनी इज्जतों की रोजी अता फरमाई। हमें आप दस्तरखान पे इतने खाने अता फरमाते हैं, हमें क्या सुरखाब के पर लगे हुए हैं, क्या चीज है हमारे पास, ये अल्लाह का एहसान है। जब उसने हमें इतनी इज्जतों से रोजी दी, हम उसका क्यों ना शुक्र अदा करें। ए अल्लाह, हम आपका शुक्र अदा करते हैं कि आपने हमारे ऊपर बहुत से एहसानात किए। तो नेमतों को अल्लाह की तरफ मंसूब करना और अल्लाह की फरमाबरदारी करना, ये नेमतों का शुक्रगुजारी है। और अल्लाह ताला की तारीफ का कोई मौका आए तो खूब अल्लाह की तारीफ करें, ये भी शुक्र में है। बीवी खाविंद की तारीफ करते नहीं थकती, माँ बेटे की तारीफ करते नहीं थकती, हम अपने अल्लाह की तारीफ करते क्यों थकें भाई? जितनी तारीफ करें उतना कम है। और अगर हम गौर करें ना तो अल्लाह की तारीफ ज्यादा नहीं लग कर पाते। मैं एक आदमी को जानता हूं जिसका कारोबार इतना अच्छा है कि अगर अपनी फैमिली के अलावा वो 40 घरों का नान नफका अपने जिम्मे ले ले तो वो उनको भी सपोर्ट कर सकता है, 40 घरों को सपोर्ट कर सकता है। इतना अमीर आदमी, इतना अच्छा उसका कारोबार है। एक दफा मुलाकात हुई तो मैंने उससे पूछा, सुनाओ भाई काम कारोबार कैसा है? तो मुंह बना के कहने लगा, जी बस गुजारा है। फिर मैंने उसकी खूब क्लास ली, मैंने कहा तुझे तेरी मार है, अल्लाह ने इतना रिस्क दिया कि आप अपने अलावा 40 और घरानों का भी नान नफका अपने जिम्मे ले सकते हैं, इतना अल्लाह ने खुला रिस्क दिया। और जब पूछे कि काम कैसे है तो मुंह बना के कहते हैं कि गुजारा है। आपको तो चाहिए था जवाब देते कि अल्लाह ने मेरी औकात से बढ़ के मुझे दिया, मैं तो सारी जिंदगी सजदे में सर डाल के पड़ा रहा हूं, मैं अपने अल्लाह का फिर भी शुक्र अदा नहीं कर सकता। मगर पता नहीं क्या बात है, अल्लाह की तारीफें हमारी जुबान से नहीं निकलती। तो शुक्र अदा करने में ये पॉइंट भी ध्यान में रखें कि जब कभी मौका मिले अल्लाह की खूब तारीफें करें कि वाकई मेरे अल्लाह ने मुझे मेरी औकात से बढ़ के दिया है, मैं अल्लाह का एहसान मंद हूँ, शुक्र गुजार हूँ, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, ताकि हम अल्लाह के शुक्र गुजार बंदों में शामिल हो। अब एक सवाल और पैदा होता है, किस किस नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए? आप जरा गौर कीजिए, कुरान और हदीस से मैं चंद नेमतों का तज़करा करूंगा। कई नेमतें ऐसी होंगी कि जो पहली मर्तबा आपके इल्म में आएंगी। इसका मतलब ये है कि अगर पहली दफा इल्म में आ रही हैं तो हमने उस पर कभी अल्लाह का शुक्र अदा भी नहीं किया, तो हमें उन नेमतों पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। सबसे पहली बात, अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में दुरुस्त आज़ा के साथ पैदा किया, आंखें दी, जबान दी, अकल दी, कान दिए, हर चीज अल्लाह ने सेहतमंदी वाली अता फरमाई, इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। कितने लोग ऐसे होते हैं कि जिनको ये नेमतें नहीं मिलती। हमारे पास एक नौजवान तालिब इल्म था, नाबीना था, 18-19 साल उसकी उम्र हो गई थी, उसने हिफ्ज मुकम्मल किया तो हमने उसकी दस्तारबंदी करवाई और वो हाफिज साहब चले गए। फिर एक जगह पर उनको जॉब मिल गई तो मसरूफ हो गए। चंद महीनों के बाद वो हाफिज साहब अपने एक दोस्त को लेके मेरे पास मिलने के लिए आए। बड़ा फ्रेश चेहरा था, मुनव्वर चेहरा, हाफिज कुरान था, नेक और नेक नौजवान था। मुझे मिला, हजरत साहब मैं आज आपके लिए एक खास दुआ करवाने आया हूं। मैंने उसकी तरफ देखा, उसका मुस्कुराता चेहरा देखा, चमक रहा था चेहरा, नौजवान चेहरा था, तो मैंने उसको मिसअंडरस्टैंड किया। मैं समझा अब इसको जॉब मिल गई है और अब ये मेरे पास आया है कि हजरत दुआ कर दें, अब मेरी शादी हो जाए। तो जब वो उसने मुझे कहा ना कि मैं आपसे खास दुआ करवाने आ जाया हूं, तो मैंने कहा हाफिज साहब खैरियत तो है, शादी की दुआ करवानी है। तो जैसे ही मैंने कहा ना कि क्या शादी की दुआ करवानी है, वो बच्चा बिल्कुल सीरियस हो गया, संजीदा हो गया। और फिर उसकी ना दोनों रुखसारों पे आंसू टपक आए। तो मैं भी परेशान हो गया कि क्या ऐसी बात हुई कि हाफिज साहब की आंखों से आंसू आ गए हैं। तो मैंने पूछा हाफिज साहब क्या हुआ, आपकी आंखों में से आंसू क्यों आए? तो हाफिज साहब मुझे कहने लगे, हजरत मैं शादी की दुआ करवाने नहीं आया, मैं खास दुआ ये करवाने आया हूँ कि जिसको मैं अपनी माँ कहता हूँ, मैं आज तक उसका चेहरा नहीं देख सका, आप ये दुआ कर दे अल्लाह मुझे एक लम्हे के लिए बिनाई दे दे, मैं माँ का चेहरा तो देख लूं। उसके बात करने पर मुझे एहसास हुआ अल्लाह ये बिनाई कितनी बड़ी नेमत है जो आपने हमें बिन मांगे अता कर दी है, हमने वाकई इसका शुक्रिया अदा नहीं किया जैसे करना चाहिए था। कितने लोग होते हैं बोल नहीं सकते, अपना माफी जमीर बयान नहीं कर सकते, इशारों से बात करते हैं। कितने लोग होते हैं दूसरे की बात को सुन नहीं सकते, इशारों से समझाना पड़ता है। हमें अल्लाह ने ये नेमतें अता फरमाई, हम इस पर क्यों ना अल्लाह का शुक्र अदा करें। तो दुरुस्त आजा के मिलने पर अल्लाह का शुक्र अदा करना। फिर दूसरी बात, अल्लाह ने हिदायत अता फरमाई, कलमा पढ़ने की तौफीक अता फरमाई, ये भी अल्लाह का एहसान है। जिस वक्त हम दुनिया में पैदा हुए थे, एन उसी लम्हे पूरी दुनिया में सैकड़ों हजारों और भी बच्चे पैदा हुए थे, मगर वो बच्चे काफिर माँ की गोद में पैदा हुए, हमें अल्लाह ने एक मुसलमान माँ की गोद में पैदा किया, ये भी अल्लाह का एहसान है। हम भी तो किसी काफिर माँ की गोद में पैदा हो सकते थे, फिर पता नहीं हमें ईमान मिलता कि ना मिलता। आज हमें अगर ईमान मिला है तो ये एक मुसलमान माँ की गोद में पैदा हुए, पले बड़े उसने हमें अल्लाह का नाम सिखाया, फिर हमें ऐसा बाप मिला के जिसने हमें उंगली पकड़ के मस्जिद का रास्ता दिखाया, अल्लाह से जोड़ा, दीन सिखाया, कलमा सिखाया। तो हिदायत की मिल जाना ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, इस पर भी हम अल्लाह का शुक्र अदा करें। फिर अल्लाह ताला ने हमें इल्म अता फरमाया, ये इल्म अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करें। कितने बच्चे होते हैं जो देखने में सेहतमंद होते हैं मगर रिटार्डेड जहन के होते हैं, वो पढ़ नहीं सकते। हमें अल्लाह ताला ने ऐसा सेहन अता किया, आज कोई डॉक्टर बना हुआ है, कोई इंजीनियर बना हुआ है, कोई चीफ इंजीनियर बना हुआ है, ये नेमत अल्लाह ने हमें अता की, इस पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह हम आपकी इन नेमतों का शुक्र भी अदा नहीं कर सकते। फिर मकान के मिलने पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। अगर किसी बंदे को अल्लाह मकान अदा करे, मकान पे नजर पड़े, अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह आपने सर छुपाने की जगह अदा फरमा दी। कितने लोग हैं जो पूरी जिंदगी अपना मकान नहीं बना पाते, किराए के मकान में जिंदगी गुजारते हैं और किराए के मकानों में ही से उनका जनाजा उठाया जाता है। हमें अल्लाह ताला ने अपना घर दिया, अपनी छत अता फरमाई, इस पर जितना शुक्र अदा करें कम है। आज से कोई 25-30 साल पहले की बात है, हमें बांग्लादेश जाने का मौका मिला, तो मैंने वहां देखा कि बहुत सारे लोग, मर्द, औरतें, बच्चे, वो नंगे पांव चलते थे, सड़क के किनारे चल रहे होते थे और जूते नहीं पहने होते थे। तो मेरे लिए एक अजीब बात थी, मैं हैरान होता। एक दफा एक मुफ्ती साहब थे, उनसे मैंने पूछा कि मुफ्ती साहब मगरिब का वक्त करीब है और सड़क के किनारे सब्जा भी बहुत है, घास बहुत है, बारिशें होती हैं, और इस घास में कोई बिच्छू इनको काट सकता है, कोई सांप काट सकता है, कोई कीड़ा नुकसान पहुंचा सकता है, ये लोग जूते क्यों नहीं पहुंचते, इनको जूते पहनने चाहिए। तो मुफ्ती साहब मुझे देख के कहने लगे, हजरत ये पाकिस्तान नहीं है, ये बांग्लादेश है, यहाँ गुर्बत इतनी ज्यादा है कि यहाँ पर कितने लोग हैं जो पैदा होते हैं और अपने मरने तक वो पांव में जूता पहन के देख नहीं सकते, वसाइल नहीं है, नंगे पांव पैदा होते हैं और नंगे पांव ही मर जाते हैं, उनको पहनने को जूता नहीं मिलता।
आप बताइए, अगर ऐसे भी लोग हैं तो हमें अल्लाह ने जो पहनने के लिए जूते दिए, ये अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है हमारे पास। हम इन नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। घर अल्लाह ने दिया, शुक्र अदा करें। कितने लोग हैं जो मुसाफिर की जिंदगी गुजारते हैं, एक जगह रहते हैं, फिर दूसरी जगह जाके रहते हैं, फिर तीसरे पे खेमा लगाते हैं। वो खाना बदोश लोग होते हैं, उनका अपना कोई घर नहीं होता। हमें अल्लाह ने घर दिया, इस पर हम अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है। फिर जो शादीशुदा लोग हैं, वो बीवी के मिलने पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। नबी साहब ने फरमाया, दुनिया मता व खैर मताउहा इमरातुन अलमरअतु सालिहा, कि दुनिया मता है और उसमें से बेहतरीन मता नेक बीवी का मिल जाना है। अब अल्लाह ताला किसी को नेक बीवी अता फरमाए तो इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। ये वो अमल है जिसमें हम में से बहुत सारे लोग नाशुक्री के मर्तकब होते हैं। बीवी का मिल जाना अल्लाह की एक नेमत है, मगर बीवी खाविंद के मिलने पे शुक्र अदा नहीं करती और खाविंद बीवी के मिलने पे शुक्र अदा नहीं करता। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, औरतों मैंने देखा कि तुम में से बहुत सारी औरतें जहन्नम में जाएंगी। तो औरतों ने पूछा कि ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिर औरतें जहन्नम में क्यों ज्यादा जाएंगी? फरमाया, तुम में दो आदतें ऐसी हैं कि जिनकी वजह से जहन्नम में जाएंगी। एक तो जब कोई नेमत मिलती है तो उसमें बहुत मीम मेख निकालती हैं, उस पर लानत करती हैं, ये अच्छी चीज नहीं, ये अच्छी चीज नहीं, इसमें ये नुक्स है, इसमें ये नुक्स है। और दूसरी बात यह कि तुम अपने शौहर की नाशुक्री करती हो। और वाकई मियां बीवी का ताल्लुक होता भी मोहब्बत प्यार का है, नाज अंदाज का है, मगर उस नाज अंदाज के अंदर कई मरतबा बीवी वाकई खामिद की नाशुक्री करती है। उसके एहसानात तो याद नहीं होते, और छोटी छोटी अगर बातें होती हैं तो इतनी याद होती हैं कि डेटाबेस खत्म ही नहीं होती। जब कभी आप बात करके देख लें, जिस दिन रुखसती हुई थी ना वहां से शुरू करेंगी, जिस दिन मेरी रुखसती हुई थी उस दिन ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, ऐसे गड़े मुर्दे उखाड़ेंगी कि जैसे उस जैसा जुल्म तो कभी किसी ने किया नहीं होगा। तो बुरे पॉइंट्स, वीक पॉइंट्स याद रखती हैं और जो प्लस पॉइंट होते हैं उनको इग्नोर करती हैं। तो बीवी खाविंद की तरफ से नाशुक्री करती है और खाविंद बीवी की तरफ से नाशुक्री करता है, इस पर हम शुक्र अदा नहीं करते। फिर अल्लाह ताला ने अगर औलाद अता फरमा दी तो इस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करें। कितने लोग हैं जो औलाद चाहते हैं मगर होती नहीं, इलाज भी करवाते हैं, डॉक्टरों के चक्कर भी लगाते हैं, दुआएं भी करते हैं, औलाद नहीं होती। हमें अल्लाह ताला ने अगर औलाद अता फरमाई तो ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह का एहसान है, इस पर हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। फिर सवारी के मिलने पे अल्लाह का शुक्र अदा करें। अलम तरा अन्नल फुल्क तजरी फिल बहर बिनिअमतिल्लाहि लियुरीहु मिन आयातिही इन्न फी ज़ालिका लआयातिल लिकुल्लि सब्बारिन शकूर। सवारी के मिलने पर अल्लाह फरमाते हैं इसमें निशानियां हैं उस बंदे के लिए जो मेरा शुक्र अदा करने वाला है। गाड़ी मिले तो अल्लाह का शुक्र अदा करे, मोटरसाइकिल मिले तो अल्लाह का शुक्र अदा करे, साइकिल मिले तो भी अल्लाह का शुक्र, सवारी तो है ना, तो सवारी के मिलने पर अल्लाह का शुक्र अदा करना। मगर आजकल क्या, जिसके पास साइकिल होता है वो कहता है जी मेरे पास साइकिल है, फलां के पास तो मोटरसाइकिल है, और मोटरसाइकिल वाला कहता है जी कि मेरे पास तो टू व्हील है और फलां के पास तो गाड़ी है, और गाड़ी वाला कहता है मेरे पास तो जी सुजुकी की गाड़ी है, फलां के पास तो टोयोटा की गाड़ी है, और टोयोटा वाला कहता है जी फलां के पास तो पजारो है, और पजारो वाला कहता है जी फलां के पास तो वो फरारी है जी, रेस वाली गाड़ी है। यानी हर बंदा अपने से ऊपर वाले को देखता है और जो है उसके ऊपर शुक्र अदा नहीं करता, तो ये नाशुक्री होती है। हम अल्लाह का शुक्र अदा करें, जब शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह अपनी नियमतों को और ज्यादा अता फरमाएंगे। फिर پھر عافیت کے ملنے پر, جب ہر چیز ٹھیک چل رہی ہو نا, اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں. کیوں کہ اگر اللہ تعالی کی رحمت کی نظر نہ ہوتی تو کوئی نہ کوئی مصیبت پڑ جاتی. جب کوئی مشین ٹھیک پروڈکشن دے رہی ہوتی ہے نا, تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ مشین کی سپرویژن کرنے والا ٹھیک ٹھیک سپرویژن کر رہا ہے تو فیکٹری کی پروڈکشن چل رہی ہے. اگر وہ سپرویژن نہ کرتا تو مشینوں میں بریک ڈاؤن آتا اور سپلائی بند ہو جاتی. تو فیکٹری کی پروڈکشن کا ٹھیک نکلتے رہنا اس بات کی دلیل کہ سپرویژن کرنے والا ٹھیک سپرویژن کر رہا ہے. ہماری زندگی اگر ٹھیک چل رہی ہے, بیوی بھی خوش ہے, بچے بھی خوش ہیں, جاب کے حالات بھی اچھے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز ٹھیک ہے, عافیت کی زندگی ہے. اس پر اللہ کا شکر ادا کرے. جاب میں پرابلم ہو جاتا تو کیا مصیبت ہوتی, بیوی ناراض ہو جاتی تو کیا مصیبت ہوتی, بچے نافرمان ہوتے تو مصیبت ہوتی, ہر چیز پر مصیبت ہو سکتی تھی. ہماری اپنی صحت خراب ہو جاتی تو ہمارے ساتھ کیا ہوتا. تو جب ہر چیز ٹھیک چل رہی ہے, یہ بھی اللہ کا فضل ہے. یہ خزاں کی فصل کیا ہے, فقط ان کی چشم پوشی. وہ اگر نگاہ کر دیں تو ابھی بہار آئے. اگر بہار ہے زندگی میں تو یہ اللہ کی نظر عنایت ہے. اگر نظر عنایت ہٹ جاتی تو ہمیں اپنی اوقات کا پتہ چل جاتا ہے. اس لیے عافیت کے ملنے پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ اگر کسی کو کھیتی اور باغات عطا فرمائے تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا, زرعی زمین مل جاتی ہے, اللہ فرماتے ہیں وَرْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ, ان کو ہم نے پھل عطا کیے کھانے کے لیے تاکہ وہ اس پر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے. پھر ضرورت کے مطابق انسان کو رزق ملتا ہے, چیزیں مل جاتی ہیں, کسی کی محتاجی نہیں کرنی پڑتی, اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ آپ نے ہمیں غیر کی محتاجی سے محفوظ فرمایا, ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. پھر مصیبت کے ٹلنے پر اللہ کا شکر ادا کریں. مثلاً آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے, ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچ گیا, اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ اگر یہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا تو مصیبت ہوتی میرے لیے, آپ نے میری حفاظت فرمائی, میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں. بچے کھیل رہے تھے, کوئی گرا نہیں, کسی کو چوٹ نہیں لگی, کسی کا بازو نہیں ٹوٹا, اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مصیبت سے بچا لیا. اور ایک پوائنٹ اور, کہ جب لوگ آپ کی تعریف کریں اس وقت اللہ کا شکر ادا کریں, کیونکہ جو کوئی ہماری تعریف کر رہا ہے وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی ستاری کی تعریف کر رہا ہے جس نے ہمارے عیبوں کو چھپایا ہوا ہے, ورنہ ہم تعریف کے قابل کہاں تھے. تو جب بھی کوئی تعریف کرے فوراً اللہ کا شکر ادا کرے, الحمدللہ دل میں کہیں کہ اللہ آپ کتنے عظیم ہیں کہ میری حقیقت کو آپ نے چھپا دیا اور لوگ میری تعریفیں کر رہے ہیں, حالانکہ میں تعریف کے قابل تو نہیں ہوں. شکر ادا کرنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان جتنا زیادہ شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں اور زیادہ اس کو عطا فرماتے ہیں. اس لیے کہا گیا شکر قید الموجود وسید المفقود, کہ شکر جو ہے, جو نعمت موجود ہوتی ہے وہ قید ہو جاتی ہے, اور جو نعمت موجود نہیں ہوتی وہ شکار ہو جاتی ہے, اللہ وہ بھی عطا فرما دیتے ہیں. تو شکر ادا کرنے سے نعمتیں زیادہ ہوتی جاتی ہیں. کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بڑے میاں تھے, وہ بڑے قناعت پسند تھے, وہ چاہتے تھے کہ بس دنیا میں مجھے گزارے لائق ملتی رہے, روزی کافی ہے میرے لیے, باقی جو کچھ ہے اللہ مجھے آخرت میں انعام دے, دنیا میں نہ دے. جتنا وہ اللہ سے دعائیں مانگتے اتنی اور نعمتیں ملتی, وہ بڑے پریشان. ایک دن دعا مانگنے لگے, یا اللہ جب میں بار بار آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ مجھے دنیا میں اور کچھ نہیں چاہیے تو آپ کیوں مجھے اور دے دیتے ہیں, مجھے آخرت میں چاہیے, دنیا میں نہیں چاہیے. تو جب انہوں نے رو رو کے دعا کی نا, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, میرے بندے میں تمہیں جب کوئی نعمت دیتا ہوں تو اس کا شکر ادا کرتا ہے, جب تک تو شکر ادا کرتا رہے گا हम उस वक्त तक तुझे अपनी नेमतें और देते रहेंगे, हम नेमतों को बंद नहीं करेंगे। तो हम शुक्र अदा करेंगे, अल्लाह अपनी नेमतें और ज्यादा अदा फरमाएंगे। और एक आखिरी चीज, नेक आमाल की तौफीक मिलने पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। किसी को उम्रे की तौफीक मिल गई, हज की तौफीक मिल गई, या जैसे इस घर के एक बच्चे ने कुरान मजीद को हिफ्ज किया, मुकम्मल किया, अब ये हिफ्ज की तौफीक मिल जाना ये अल्लाह का इनाम है, और उसके शुक्राने के तौर पे आज की मजलिस का इनेकाद हुआ। अल्लाह ताला इस बच्चे को कुरान मजीद का हाफिज बनाए, आलिम बनाए, कुरान मजीद का आशिक बनाए, और माँ बाप के लिए इस बच्चे को अल्लाह आखिरत और दुनिया दोनों का जखीरा बनाए। तो नेक आमाल की तौफीक मिले, कोई मस्जिद बनाता है, कोई मदरसा बनाता है, या कोई किसी अल्लाह वाले की खिदमत करता है, या कोई अल्लाह के रास्ते में चिल्ला लगाता है, सिरोजा लगाता है, जो भी नेक अमल की तौफीक मिले इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करे, इस पर भी शुक्र अदा करना चाहिए। कोई बंदा किसी यतीम की कफालत करता है, अल्लाह का शुक्र अदा करे। किसी को अल्लाह ताला माँ बाप की खिदमत की तौफीक दे देता है, तो इस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करें। हर बंदा खिदमत नहीं कर सकता, किस्मत वाले को ये नेमत मिलती है। आमतौर पर ऐसा होता है कि माँ बाप तो औलाद की खिदमत करते हैं, जब औलाद माँ बाप की खिदमत के काबिल होती है तो माँ बाप दुनिया से चले जाते हैं। अलामा इकबाल ने यही तो लिखा अपनी वालदा के बारे में, उम्र भर तेरी मोहब्बत मेरी खिदमत कर रही, उम्र भर तेरी मोहब्बत मेरी खिदमत कर रही, मैं तेरी खिदमत के काबिल जब हुआ तू चल बसी। कई मरतब ऐसा होता है इंसान जब खिदमत के काबिल होता है तो माँ बाप चले जाते हैं दुनिया से, तौफीक नहीं मिलती। अगर किसी को जिंदगी में उनकी खिदमत की तौफीक मिल जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। बीवी बच्चे खामिद से खुश हैं, खामिद इस बात पे अल्लाह का शुक्र अदा करे। बीवी से खामिद खुश है, बीवी अल्लाह का शुक्र अदा करे कि शुक्र है मेरा खामिद मुझसे खुश है, बच्चे मुझसे खुश हैं। इन नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, अल्लाह अपनी नेमतें और ज्यादा अदा फरमाएंगे। हजरत सैयद नफीस शाह रहमतुल्लाह ने लिखा, शुक्र है तेरा खुदाया मैं तो इस काबिल न था, तूने अपने घर बुलाया मैं तो इस काबिल न था। शुक्र है तेरा खुदाया मैं तो इस काबिल न था, तूने अपने घर बुलाया मैं तो इस काबिल न था। मुद्दतों की प्यास को सैराब तूने कर दिया, जाम जमजम का पिलाया मैं तो इस काबिल न था। डाल दी ठंडक मेरे सीने में तूने साकिया, मुंतजिम पे है लगाया मैं तो इस काबिल न था। मैं के था बेराह तूने दस्तगीरी आपकी, गिर्द काबे के फिराया मैं तो इस काबिल न था। तेरी रहमत तेरी शफकत से हुआ मुझको नसीब, तेरी रहमत तेरी शफकत से हुआ मुझको नसीब। गुम्बदे खदरा का साया मैं तो इस काबिल न था। बारगाहे सैयदुल कौनैन में आकर नफीस, सोचता हूँ कैसे आया मैं तो इस काबिल न था। अल्लाह ताला किसी को मक्का और मदीना की ज्यारत की तौफीक अदा फरमाए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। बारगाहे सैयदुल कौनैन में आकर नफीस, सोचता हूँ कैसे आया मैं तो इस काबिल न था। हमें अल्लाह ने वाकई बहुत नेमतों से नवाजा है। हम लोग जो हैं अल्लाह के नेमत में पलने वाले बंदे हैं, हम हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करें। ऐ अल्लाह अपनी इन नेमतों को सलामत रखिएगा, और हमें क्यामत के दिन अल्लाह नेमत की नाकदरी करने वालों में शामिल न फरमाना। वह अम्मा बिनेमत रब्बे का फहद्दिस, अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह की नेमतों का तज़किरा करो लोगों के सामने कि अल्लाह ने हम पर बड़ा एहसानात किया है, वरना क्यामत के दिन तुमसे नेमतों का सवाल होगा। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अन्नईम, क्यामत के दिन हम अपनी नेमतों का लोगों से सवाल करेंगे। हम तो वाकई अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा नहीं कर सके, तौफीक मांगते हैं रब्बे औज़िनी अन अशकुरा नेमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया। ऐला नेमत शुक्र अदा फरमा, तौफीक अदा फरमा कि हम आपकी दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करें। اور شکر ادا کرنے والے بندوں میں ہم شامل ہو جائیں اور ناشکری کرنے والوں سے ہمیں محفوظ فرما دینا. اور اب تک ہم نے جو ناشکریاں کی ہیں اللہ ہم اس گناہ پر سچی توبہ کرتے ہیں اور آج آپ کے شکر گزار بندوں میں شامل ہوتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
دعا سے پہلے ہم توبہ کے کلمات پڑھ لیتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے اور آئندہ ہمیں نیکوکاری کی زندگی نصیب فرمائے. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد, یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع احکامه اقرار باللسان وتصدیق بالقلب اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك يا ارحم الراحمين. ان کلمات کو پڑھنے سے تو بتائے ہو چکے ہیں, چند معمولات ہیں ان کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی محبت ہمارے سینے میں بھر دیں گے. پہلی چیز ہے 100 مرتبہ استغفار پڑھنا, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. دوسرا ہے 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا. تیسرا ہے روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا. چوتھا ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا. اور پانچواں ہے مراقبہ کرنا, 15-20 منٹ صبح اور شام اللہ سے لو لگا کے بیٹھیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے, دل میں سما رہی ہے, دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 دل کہہ رہا ہے. انشاءاللہ اس طرح سے مراقبہ کریں گے تو اللہ کی محبت دل میں آئے گی. ہم دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر کے اللہ سے لو لگا کے بیٹھ جائیں اور مراقبہ کر لیں. یا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجیے. سبحان ربی العلی البہا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے رب کریم, ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں, گناہوں کو معاف فرما, خطاؤں سے درگزر فرما, عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اے اللہ, ہمارے جسمانی بیماریوں کو دور فرما, روحانی بیماریوں کو دور فرما. اللہ, ہمارے علم میں برکت عطا فرما, عمل میں برکت عطا فرما, رزق میں برکت عطا فرما, عزت میں برکت عطا فرما, کاموں میں برکت عطا فرما. اے اللہ, صاحب خانہ نے جس محبت کے ساتھ اپنے گھر بلایا اس کے بدلے اللہ ان کے عشق میں برکتیں عطا فرما, عزت میں برکتیں عطا فرما, ان کے کاموں میں برکتیں عطا فرما. رب کریم, اس گھر کو برکتوں کے ساتھ آباد فرما, خوشیوں کے ساتھ آباد فرما, دین کے ساتھ آباد فرما, صحت سلامتی کے ساتھ آباد فرما. اے اللہ, اس گھر کے لوگوں کو اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرما, آپس میں الفتیں محبتیں پیدا فرما. اے اللہ, ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, تب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم